पृष्ठ संख्या 33, अंग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। साहित्य सृजन की दृष्टि से हिंदी का आदिकाल भाषा और काव्य रूप दोनों ही दृष्टियों से बड़ा ही वैविध्यमय है। इस काल में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अपभ्रंश अवहट्ट मिश्रित पुरानी हिंदी चार चार भाषाओं में रचनाकर्म हुआ। संस्कृत भाषा का वर्चस्व इस काल तक बना रहा। संस्कृत भाषा के ग्रंथों में कविराज कृत, राघव पांडवीय, अभिनव कृत, रामचरित ब्रैकेट में 11वीं शती, शिव स्वामी कृत, रामायण मंजरी, क्षेमेंद्र कृत, बृहत कथा मंजरी ब्रैकेट में 11वीं शती आदि मुख्य हैं। अनेक जैन कवियों ने भी संस्कृत में चरित काव्य लिखे, जैसे असंगकृत, शांतिनाथ चरित, वादिराज कृत, पार्श्वनाथ चरित आदि। आश्रयदाताओं की कृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए कई प्रशस्ति मूलक काव्य भी इस युग में रचे गए, जैसे बिल्हण कृत, विक्रमांक देवचरित, कल्लण कृत, राजतरंगिणी, हेमचंद्र कृत, कुमारपाल प्रतिबोध, जयानक कृत, पृथ्वीराज विजय आदि इसी परंपरा के ग्रंथ हैं। यह परंपरा संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों में एक साथ देखने को मिलती है। हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों प्रकार के कवियों की कविताओं के उद्धरण मिलते हैं, इसका प्रमाण है। सिद्धों, नाथों, जैन एवं चारण कवियों तथा अन्य स्वतंत्र धारा के कवियों के काव्य सृजन से आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। एक, वीरता और शौर्य की प्रवृत्ति। दो, प्रेम और श्रृंगार की प्रवृत्ति। तीन, नीति एवं धर्मोपदेश की प्रवृत्ति। चार, भक्ति और वैराग्य की प्रवृत्ति। पृष्ठ संख्या 34। पाँच, सामाजिक सामरस्य की प्रवृत्ति। छः, विविध भाषा शैली और काव्य रूप की प्रवृत्ति। वीरता और शौर्य की प्रवृत्ति आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। आश्रयदाताओं के शौर्य, पराक्रम, दानवीरता, उदारता तथा उनकी प्रशंसा और प्रशस्ति का वर्णन इस काल के कवियों ने बढ़ चढ़कर किया। वीर पुरुष, वीर नारी, वीर जाति का सम्मान इस युग में गौरव की बात थी। वीरता की अनेक गर्भोक्तियाँ, ओज, उत्साह और स्फूर्ति का संचार कर देने वाली अनेक रचनाओं में यहाँ विद्यमान हैं, जैसे जगनिक के परमाल रासो या आल्हा की ये पंक्तियाँ, 12 बरिस ले कूकर जिये और 13 लय जिये सियार, बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि इन्वर्टेड कामा, ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। इन्वर्टेड कॉमा बन, इस युग में निर्भीक होकर कर्तव्य रक्षा के लिए युद्ध भूमि में प्राणों का उत्सर्ग कर देना गौरव और सम्मान की बात समझी जाती थी। वीरता में इस युग की नारियां भी पीछे नहीं थीं। आचार्य शुक्ल ने हेमचंद्र के सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक ग्रंथ जो अधोलिखित दोहा उद्धृत किया है, वह इसका प्रमाण है। भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ी महारा कंतु, लज्जे जेतु वयम सियतु जय भग्गा घरु एंतु। अर्थात, हे बहिन, अच्छा हुआ जो युद्ध में मेरा पति मारा गया, क्योंकि यदि वह डर से भागकर घर आता तो मैं अपनी सखियों को कैसे मुंह दिखाती, तब मुझे समवयस्काओं में लज्जित होना पड़ता। आदिकालीन वीरता और शौर्य की इन प्रवृत्तियों का वर्णन इसी प्रकार अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। पृथ्वीराज रासो, भरतेश्वर, बाहुबली रास, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका आदि में वीरता और शौर्य का ऐसा ही अतिरंजनापूर्ण चित्रण हुआ है। वीरता के पश्चात प्रेम और श्रृंगार इस काल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के युद्धोल्लास का जिस प्रकार चित्रण किया है, उसी प्रकार उनकी प्रणय या खेल क्रीड़ाओं का भी। इस युग की प्रवृत्ति का निवृत्ति मूलक सभी प्रकार की काव्य धाराओं में प्रेम और श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण हुआ है। सिद्धों का तो मानना ही था कि इंद्रियों में रमण किए तथा उनकी अनुभूति पाए बिना कोई भी व्यक्ति समाधि में सफल ही नहीं हो सकता। नाथों ने अवश्य ही इसका विरोध किया, किंतु जैन और चारण कवियों ने इसका सम्यक अवगाहन करते हुए अपनी कृतियों में अनेक मुग्धकारी चित्रण किए। चंद के पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान के संदेश रासक, नरपति, नाल के पृष्ठ संख्या 35, बिसल देव रासो तथा विद्यापति की पदावली के साथ ही साथ जैन कवि शालिभद्र सूरि के भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु के चंदन बाला रास, विजयसेन सूरि के रेवंतगिरि रास आदि में भी श्रृंगार और वैराग्य के एक साथ चित्रण देखे जा सकते हैं। विद्यापति के सद्या स्नाता का एक दृश्य देखिए। कामिन करे सनाने, हिरत ही हृदय है नये पंच बाने, चिकुर गैरे जलधारा, जन मुख सस उर रूप अंधारा। नीति और धर्मोपदेश की प्रवृत्ति भी इस युग की एक भिन्न विशेषता है। सिद्धों, नाथों से लेकर जैन कवियों के धार्मिक साहित्य में इस प्रवृत्ति की प्रधानता है, क्योंकि इस साहित्य सृजन के पीछे धर्म का ही हाथ है। यह काव्य इसलिए पूर्णतः धर्म से ही अनुप्राणित है। इसमें संयम, नियम, सदाचार, अहिंसा, अस्तेय, त्याग, परोपकार, दया, सहिष्णुता, मितव्ययिता, कर्म की महत्ता, पाखंड का खंडन, अंतरात्मा की पवित्रता पर बल आदि उदात्त भावों की प्रतिष्ठा हुई है, जिसका विकास आगे चलकर भक्ति युगीन कवियों के काव्य में दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, रासो काव्यों में भी अनेक स्थलों पर कुछ न कुछ धर्म और नीति के उपदेश मिल जाते हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ सभी प्रकार के बाह्य आचार का खंडन करते हुए कहते हैं कि गंगा के नहाए कहो को नर तरिए, मछरी न तरी जाको जल ही में घर है। भक्ति और वैराग्य की प्रवृत्ति जो भक्ति युगीन कविता में अपने चरम पर दिखाई पड़ती है, उसके बीज आदिकालीन कवियों के काव्य में देखे जा सकते हैं। सिद्धों, नाथों और जैनियों के साहित्य का अधिकांश भक्ति और वैराग्य की निर्मल भावना से मंडित है। सिद्ध प्रवृत्ति मार्गी अवश्य हैं, किंतु यह उनका लक्ष्य नहीं, साधन मात्र है। लक्ष्य तो महासुख, महारस की प्राप्ति है। नाथ साधना का लक्ष्य भी उस अलख निरंजन का साक्षात्कार है जो कण कण में व्याप्त है। इसी प्रकार स्वयंभू और पुष्पदंत जैसे जैन महाकवियों के काव्य में भक्ति की यह प्रवृत्ति अपने उदात्त स्वरूप के साथ विद्यमान है। इतना ही नहीं, लौकिक साहित्य में विद्यापति की तो पूरी कविता ही भक्ति और आध्यात्म के रंग में रंगी हुई है। उनके राधा कृष्ण के अलावा गंगा और शिव की स्तुतियों में भक्ति का परम अनन्य भाव देखा जा सकता है। वह अत्यंत ही आर्त और निश्चल भाव से भगवान शिव से कहते हैं, कखन हरण दुख मोर हे भोला नाथ, दुखहि जन्म भेल दुखहि गमाउल। पृष्ठ संख्या 36। सुख सपनहु नहि भेल हे भोला नाथ, अक्षत चानन आवोर गंगा जल, बिलपत तो ही देव हे भोलानाथ। डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदरदास तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने विद्यापति को हिंदी का पहला भक्त कवि माना है। सामाजिक समरसता की प्रवृत्ति भी इस युग की कविता में देखी जा सकती है, जिसका पूर्ण विकास आगे चलकर मध्ययुगीन संतों और भक्तों के काव्य में दिखाई पड़ता है। मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच का भेदभाव करना, जन्म के आधार पर किसी को कुलीन अकुलीन मानना, वर्ण या जाति के आधार पर किसी को छोटा बड़ा कहना, इस युग के कवियों एवं साधकों को मान्य नहीं था। सिद्धनाथ और जैनों के काव्य जहाँ धर्म मूल प्राण है, इस तरह की बातों का निषेध है। सिद्धों ने तो नीचतम जाति की स्त्रियों को भी अपनी साधना में सम्मिलित कर समाज के पाखंडों पर चोट की। मठ, मंदिर, तीर्थ, व्रत सभी व्यर्थ हैं, मनुष्यता सर्वोपरि है। सराहपा कहते हैं कि ब्राह्मण वेद पढ़कर भी मर्म को नहीं जानता, यज्ञ कर आँखों को धुएं से जलाता है। इसकी जरा कबीर से भी तुलना करके देखिए। ब्राह्मण ए ही ना जानंत ही भेव, एवै पढ़ियो ए चच्चउ वेव, कज्जे बिरही वह होमे अखि डहावि कड़ुए धम्मे। सराहपा, पंडित भूले पढ़ि गुण वेदा, आप अपन पौ जानि न भेदा, अति गुण गर्व करें अधिकाई, अतिकय गर्व न होई भलाई। कबीर। कबीर और अन्य संतों के काव्य पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा कबीर आदि संतों के लिए सिद्धों और नाथपंथी योगियों ने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया था। इन्वर्टेड कामा बंद। इसी प्रकार से विविध भाषा शैली और काव्य रूपों की प्रवृत्ति भी इस काल के साहित्य की अपनी विशिष्टता है, जिसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं। सिद्धों ने जहाँ संध्या भाषा में मुक्तक काव्य की शैली अपनाई, वहीं नाथ कवियों ने लोक भाषा के माध्यम से मुक्तक रूप में ही अपने भावों की अभिव्यक्ति की। जैन और चारण काव्य के रचयिताओं ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों को वर्ण विषय के अनुसार प्रयुक्त किया। इसमें जैन कवियों पृष्ठ संख्या 37 की भाषा अपभ्रंश भाषा है, जिसमें पुरानी हिंदी का रूप स्पष्ट देखा जा सकता है, तो चारण कवियों की भाषा मूलतः डिंगल पिंगल मिश्रित राजस्थानी है। चा आदिकालीन साहित्य की उपलब्धियाँ। हिंदी साहित्य का आदिकाल भाव और भाषा, काव्य और कला, अनुभव और संवेदना दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध है। हिंदी काव्य की सभी उत्तरवर्ती प्रवृत्तियों के बीज इस युग के साहित्य में देखे जा सकते हैं। इस युग की भाषा में भाव संप्रेषण की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, पुरानी हिंदी, संध्या भाषा, लोक भाषा या जन भाषा, खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप ब्रज भाषा, राजस्थानी, डिंगल पिंगल आदि सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया है और एक सीमा तक हिंदी के निर्माण में अपना योगदान भी। वीर, श्रृंगार, भक्ति, नीति, धर्म उपदेश और लोक रंजन इस युग की कविता के मुख्य वर्ण विषय हैं, जिनका पूर्ण विकास मध्य युग के कवियों के काव्य में देखा जा सकता है। समाज के स्तर पर भी कुरीतियों, विडंबनाओं, आडंबरों, बाह्य आचारों, अंधविश्वासों पर प्रहार कर वास्तविक सत्य का निदर्शन कराने का प्रयत्न इन कवियों ने किया है। चारण कवियों की सीमित राष्ट्रीय भावना भी आगे चलकर हिंदी कविता के नवजागरण युग में व्यापक राष्ट्रीय चेतना का आधार बनी। इस युग की भक्ति और वैराग्य की प्रवृत्ति ने भक्ति कविता की आधारभूमि तैयार की, तो श्रृंगार की प्रवृत्ति ने रीतिकाल की घोर श्रृंगारिकता का भी मार्ग प्रशस्त किया। आदिकाल के प्रबंध काव्यों की परंपरा ने आगे चलकर रामकाव्य और सूफी कवियों के प्रबंध काव्य के लिए पथ दर्शन का काम किया और काव्य में जीवन के वैविध्यमय चित्रणों के माध्यम से वर्ण विषय को अत्यंत व्यापक बना दिया। इस युग की हिंदी भाषा जनजीवन से रस लेकर आगे बढ़ी। रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, वर्णन शैली, व्यंग्य विनोद आदि सभी दृष्टियों से इस युग के कवियों ने काव्य निपुणता का परिचय दिया। कविता के लोक पक्ष और धर्म पक्ष के बीच एक अद्भुत समन्वय का लावण्य आदिकालीन कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। छा निर्गुण काव्य का परिचय। उपास्य और उपासना पद्धतियों को लेकर भक्ति काल में भक्ति के दो रूप हो गए, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया, उसका उपास्य निराकार निरंजन है, वह सभी के अंतरतम में स्थित है तथा संसार के घट घट में समाया हुआ है। वह जन्मा, अविनाशी, पूर्ण स्वयंभू है। उसके नूरमय प्रकाश से सारे लोक प्रकाशित हो रहे हैं। अज्ञानवश मनुष्य उसे नहीं जान पाता तथा वेद पुराण, कुरान और तीर्थों में उसे ढूंढता है। निर्गुण भक्ति पृष्ठ संख्या 38 में ज्ञान ही वह माध्यम है जो परम तत्व तक ले जाती है। गुरु इसमें सहायक होता है। जब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जीव के भीतर का कल्मश नष्ट नहीं होता। सगुण भक्ति में इसके विपरीत अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई। इन भक्तों के अनुसार परम ब्रह्म अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेता है, दुष्टों का संहार कर साधु पुरुषों सहित पृथ्वी का उद्धार करता है। उपासना पद्धति में यहाँ ज्ञान के स्थान पर भक्ति को प्रतिष्ठा मिली। मध्य युग की धार्मिक चेतना अत्यंत व्यापक और मानवता से ओत प्रोत रही है। भक्त कवियों की मूल चेतना मानवीय कल्याण और लोक मंगल की कामना से संपृक्त है। यह किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव मात्र के सबसे उदात्त गुणों की प्रतिष्ठा है। प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, भाईचारा इसका मूल संदेश है। आदिकाल को पीछे छोड़ते हुए भक्ति काल में पहली बार लोक संवेदना को व्यापक अभिव्यक्ति मिली तथा सामाजिक विषमता, गरीबी, धार्मिक शोषण तथा जनसाधारण की पीड़ा का भक्त कवियों ने मार्मिक चित्रण किया। संतों में अनेक तो स्वयं इस पीड़ा के भोक्ता थे। भक्ति कविता में इस निर्गुण और सगुण के विभाजन का आधार बहुत कुछ दार्शनिक मतवाद रहे हैं। शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र अद्वैत सत्ता है, शेष प्रपंच मिथ्या है। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का अवलंब ग्रहण करते हुए उसके निर्गुण निराकार रूप की प्रतिष्ठा की, जिसका प्रभाव कबीर और संत मत पर सहज ही देखा जा सकता है। कबीर ने इस परम सत्य का साक्षात्कार भी किया था और इस साक्षात्कार का दावा भी। इन्वर्टेड कामा, दीठा है सो क्यों कहूँ, कहे न को पति आए। इन्वर्टेड कामा बंद। किंतु कोई पति आए या न पति आए, कबीर ने इसकी कभी चिंता नहीं की। शंकराचार्य के विरोध में रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और बताया कि परम तत्व चित अचित विशिष्ट है। चित और अचित अर्थात चेतन और जड़ संसार दोनों उसी से निकले हैं, इसलिए दोनों सत्य हैं। संसार मिथ्या अवश्य है, किंतु यह सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि से वह भी उतना ही सत्य है जितना कि जीव। रामानुज ने ज्ञान की जगह भक्ति तत्व की प्रतिष्ठा की और ज्ञान के संकीर्ण मार्ग की जगह भक्ति का सुलभ राजपथ सबके लिए खोल दिया। निर्गुण भक्ति में ब्रह्म का साक्षात्कार विशुद्ध अनुभूति परक है। वह एक तरह से जीव और ब्रह्म अथवा आत्मा और परमात्मा की अभेद स्थिति का नाम है। इस प्रकार निर्गुण पंथ अपने भीतर अद्वैत दर्शन, योग दर्शन तथा शास्त्र प्रतिपादित नवधा भक्ति के अनेक तत्वों को समाहित कर ज्ञान युक्त भक्ति, अथवा कहें कि भक्ति युक्त ज्ञान का एक ऐसा रसायन तैयार करता है जिसका प्याला पीकर इस संत फकीर मतवाले हो गए। पृष्ठ संख्या 39। शायद यही कारण है कि निर्गुण का वर्णन करते करते वह सगुण की परिधि तक चले गए। तुलसी ने इनके बीच के पार्थक्य को ही समाप्त कर दिया और इसे सिर्फ दृष्टि का भेद कहा, वास्तविक नहीं। उनके अनुसार अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। जबकि कबीर ताल ठोंक कर बार बार ललकारते हैं, दशरथ सुत त्यूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर का निर्गुण ब्रह्म वास्तव में विशुद्ध शंकराचार्य का निर्गुण ब्रह्म नहीं है, जो सिर्फ ज्ञान का विषय है, बल्कि वह ऐसा है जो ज्ञान युक्त भक्ति का अवलंब लिए हुए है। इसीलिए निर्गुण सगुण के झगड़े में उलझने वालों को कबीर ने फटकार लगाई। हरि जैसा वैसा रहे, तू हरष हरष गुन गाई। और कई स्थलों पर तो तुलसी की भांति ही निर्गुण सगुण में समन्वय करते हुए नजर आते हैं। सरगुण की पूजा करो, निर्गुण का धरो ध्यान, निर्गुण सरगुण ते परो तहां हमारो राम। भक्ति काल में निर्गुण को आराध्य मानकर चलने वाली एक और साधना पद्धति दिखाई पड़ती है, जिसे हम सूफी काव्य या प्रेम काव्य कहते हैं। इस्लाम के आगमन के साथ ही भारत में अनेक सूफी संप्रदायों का भी आगमन हुआ, जिसमें चार मुख्य थे, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और चिश्ती संप्रदाय। भारत में चिश्ती संप्रदाय को फूलने फलने का अधिक अवसर मिला। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए और जिनमें सबसे प्रमुख थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर शरीफ के पास अपना निवास बनाया। भारत में इन्हें ही चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इस संप्रदाय के अन्य सूफी संतों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी तथा हजरत गेसुदराज आदि का नाम विशेष प्रसिद्ध है। यह सिलसिला दिल्ली, अजमेर, सरवाल, नागौर, हांसी, अयोध्या, बदायूं तथा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फैला हुआ था। सूफी साधना में भी गुरु का वही महत्व है जो संत साधना में है। सूफियों ने प्रेम तत्व को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बताया तथा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुँचने का बड़ा ही रहस्यात्मक वर्णन किया। ये इश्क मजाजी या लौकिक प्रेम के सहारे इश्क हकीकी या पारलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की बात करते हैं। इनकी विचार दृष्टि भी इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित है, दार्शनिक दृष्टि से जो शंकर के अद्वैत के निकट है। यही कारण है कि सूफी प्रेम कवियों और ज्ञानमार्गी संतों में बहुत सी बातों को लेकर समानता है। रहस्यवाद दोनों ही काव्य धाराओं एवं साधना पद्धतियों की पृष्ठ संख्या 40 एक अभिन्न विशेषता है। इसी प्रकार गुरु का महत्व दोनों के यहाँ सर्वोपरि है। सूफी कवियों ने मनुष्य के वैकुंठी प्रेम की कल्पना की है, जैसी कहते हैं, मानुष प्रेम भये वैकुंठी, नाहित काह छार एक मुठी। जा निर्गुण काव्यधारा और उसकी विशेषताएं। जा निर्गुण काव्यधारा और उसकी विशेषताएं। मध्ययुगीन धर्म साधनाओं में निर्गुण उपासना पद्धति के आधार पर जिस साहित्य का सृजन हुआ उसे निर्गुण काव्य कहा जाता है। यह निर्गुण काव्यधारा अपने दो रूपों में दिखाई पड़ती है, एक संत काव्यधारा, दो सूफी या प्रेम काव्यधारा। एक संत काव्यधारा। संत शब्द की व्युत्पत्ति सत, शांत आदि शब्दों से मानी जाती है। भारतीय मनीषा में विज्ञ, विरक्त, विरक्त, तत्वज्ञानी, स्थिति प्रज्ञ, सज्जन, परोपकारी, समदर्शी और सब प्रकार से संतोषी पुरुष को संत कहा जाता है। मध्यकाल में महाराष्ट्र में विट्ठल या वारकरी संप्रदाय के ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे भक्तों को संत कहा गया। साधना और विचार के स्तर पर कबीर आदि में समानता के कारण इनके लिए भी संत शब्द का व्यवहार होने लगा। संत कवियों को देव विरोधी या प्रात्य धारा से जोड़कर देखा जाता है, जो बौद्ध सिद्धों और नाथों की विचार सरणियों को आत्मसात करती हुई प्रवाहित हुई। संतों के वैचारिक चिंतन पर इसके अतिरिक्त उपनिषदों के ब्रह्म जीव, जगत और माया संबंधी विचारों, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन, इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा सूफियों के प्रेम तत्व या प्रेम दर्शन का गहरा प्रभाव देखा जाता है। संत परंपरा में आत्मा की एकता और अखंडता का प्रतिपादन शंकर के अद्वैत दर्शन के निकट है। सिद्धों के तंत्र मंत्र, साधना तथा नाथों के हठ योग एवं कुंडलिनी जागरण आदि यौगिक क्रियाओं का प्रभाव भी संत काव्य में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार इस्लाम के प्रभाव के कारण संतों की ब्रह्म विषयक अवधारणा एकेश्वरवाद से प्रभावित है। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन है। सूफियों के प्रभाव से दाम्पत्य प्रतीकों, विरह व्यथाओं, मधुर भावों, भावात्मक रहस्यवाद आदि की प्रवृत्ति संत कविता में आई। गुरु का महत्व तो नाथों सिद्धों की परंपरा से ही प्रतिष्ठित था। संत काव्य की विशेषताएं संक्षेप में अधोलिखित हैं। एक संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु को ईश्वर से भी महान सिद्ध किया। गुरु मार्गदर्शक है, वही साधक को तत्व ज्ञान कराता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य बिना उसकी कृपा के संभव नहीं। पृष्ठ संख्या 41 कबीर की साखियों, गुरु सिख हेरा को अंग, दादू, रैदास, रज्जब और सुंदरदास की बानियों में भी ऐसे अनेक स्थल आए हैं जो गुरु की महत्ता को अर्पित हैं। दो संतों ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना तथा हिंदू धर्म के अवतारवाद का खंडन किया। कबीर ने स्पष्ट कहा कि राम या ईश्वर कभी मनुष्य का बेटा नहीं हो सकता। ब्रैकेट में दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ब्रैकेट बंद। परम तत्व निर्गुण निराकार और निरंजन है, उसे केवल अपरोक्षानुभूति द्वारा ही जाना जा सकता है। तीन संत कवियों ने धार्मिक आडंबरों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, यज्ञ, जप, तप, बाह्य आचार आदि का खंडन किया तथा आत्मशुद्धि, चित्त की निर्मलता, हृदय और आचरण की पवित्रता पर बल दिया। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए भोग और सहज साधना को अंगीकार किया तथा नाम साधना पर बल दिया, क्योंकि अभय पद की प्राप्ति के लिए यही मूल मंत्र है। इसे संतों ने अजपा जाप कहा है। चार संत कवियों ने नारी को मुक्ति मार्ग की बाधा बताया, उसे माया का ही एक रूप करार दिया। जब तक जीव विषय वासना के पंकिल में डूबा है, माया मोह तथा अज्ञान के बंधन में पड़ा हुआ है, सांसारिक राग तत्व के आकर्षण में उलझा हुआ है, तब तक वह मुक्ति से कोसों दूर है। सच्चे ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं, भक्ति इसमें सहायक है। बिना प्रेम और भक्ति के कोरा ज्ञान यह चमत्कार नहीं कर सकता। नवधा भक्ति के रूपों में संतों में दास्य भक्ति की प्रधानता है। 5. सामाजिक स्तर पर भी संत कवियों ने धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, मजहब और संप्रदाय के नाम पर, ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर, ऊंच नीच छुआछूत जैसे विषमताओं और अज्ञान जनित कुरीतियों का खंडन किया। हिंदू और मुसलमान धर्म में व्याप्त बुराइयों को दिखाकर संतों ने बताया कि पंडित और मुल्ला दोनों अंधकार में हैं तथा मार्ग से भटक गए हैं। कोई जन्म से हिंदू या मुसलमान, ब्राह्मण या शूद्र, ऊंच या नीच, छोटा या बड़ा नहीं होता। जीव अपने कर्मों से ऐसा होता है। सभी धर्म समान हैं। सब में एक ही परम तत्व का संदेश विद्यमान है। मानवता का मजहब इस सबसे बड़ा है। जिसका धर्म इससे डिगा है, संतों ने उस पर करारा व्यंग्य किया है। 6. संतों ने मुक्तक काव्य शैली में अपनी बातें कहीं। उन्होंने राम कवियों या सूफी कवियों की तरह प्रबंध को नहीं अपनाया। शायद इनकी रचना में जिस उपदेश वृत्ति और खंडन मंडन की प्रधानता है, पृष्ठ संख्या 42, उसके लिए कविता या मुक्तक रूप ही सबसे उपयुक्त था। इसके माध्यम से वह व्यंग्यपूर्ण सामाजिक बुराइयों पर चोट कर सकते थे। 7. संत काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लोक भाषा या जन भाषा की सरसता है। उन्होंने सामान्य जन की भावना को ध्यान में रखकर उन्हीं की भाषा में रचनाएं की। इसमें अवधी, ब्रज, पंजाबी, भोजपुरी तथा राजस्थानी आदि बोलियों का मेल है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे पंचमेल खिचड़ी तो कुछ ने सधुक्कड़ी भाषा का नाम दिया है। संतों ने देशी भाषाओं और लोक प्रचलित शब्दों में अपने जीवन के अनोखे अनुभवों को शब्दबद्ध किया। 8. संतों की वाणी का सबसे बड़ा गुण गयता है। साखी और सवद या पदों और सवैयों में संतों ने संगीत का तत्व डालकर उसे गेय बना दिया। कबीर, रैदास, दादू और सुंदरदास की बानियों में यह गुण प्रचुर रूप में विद्यमान है। रस की दृष्टि से संतों के यहाँ श्रृंगार के संयोग, वियोग, दशा के मार्मिक चित्रण हैं। दाम्पत्य मूलक प्रतीकों में यह भाव अत्यंत गाढ़ा हो गया है। श्रृंगार के अतिरिक्त करुण, वीर, हास्य, व्यंग्य, अद्भुत और शांत रसों की छटाओं में संत कविता का सौंदर्य निखर करके आया है। अलंकारों में संतों ने उपमा, रूपक, दृष्टांत, तद्गुण, स्वभावोक्ति, अतियुक्ति, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, लोकोक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि का विशेष प्रयोग किया है। इस प्रकार संत कवियों ने अपने समय के समाज के यथार्थ को चित्रित करते हुए, अपने युग की संवेदना को समूर्तित करते हुए सामान्य जनभाषा में जीवन का भाव भरकर लोक के आगे परलोक का आदर्श रखकर विषय बेली कुरीतियों और जड़ पाखंडों का खंडन करते हुए जन सामान्य के लिए अत्यंत ही विशुद्ध, कल्याणकारी, निर्दोष और अकृत्रिम सहज मार्ग को प्रशस्त किया। उनके निष्प्रिय जीवन से प्रभावित होकर शासक वर्ग ने भी उनका सम्मान किया। इन संतों के व्यक्तित्व का प्रभाव हिंदू और मुसलमान दोनों पर ही समान रूप से पड़ा। इन्होंने पहली बार अशिक्षित, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, मान रहित, अपमानित उस वर्ग का दुख और दर्द सामने रखा जो सदियों सदियों से हाशिए पर था। रामानंद जैसे आकाश धर्मा गुरु से दीक्षा पाने वाले इन संतों ने समाज की उस पीड़ा को महसूस किया जिसे सदा ही कुचल कर रखा गया। इनकी बाणियों में प्रेम, बंधुता, समता, समरसता और भाईचारे का जो अनुपम संदेश विद्यमान है, मनुष्यता का जो व्यापक और उदात्त भाव उद्भाषित हुआ है, उसकी मिसाल हिंदी कविता में दूसरी नहीं है।